इतना बोलकर नंदिनी ने जल्दी से इप्सिता को अपने गले लगाया और वे सब एक दूसरे से विदा लेकर चले गए। इप्सिता के सारे घरवाले उसकी तरफ देखने लगे। उदय ने इप्सिता को कार में बैठाया और थोड़ी ही देर में वे लोग सीधे वहां से राजमहल के लिए निकल गए। रास्ते में इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और अभिमन्यु के चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी नजर आ रही थी। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु के एक्सप्रेशंस को नोटिस किया, उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या बात है अभिमन्यु, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? अभिमन्यु ने धीरे से बस अपना सिर हिलाया। इप्सिता उसकी तरफ देखकर थोड़ी सी हैरान हुई। उसने अभिमन्यु का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, नहीं, हमें आप ठीक नहीं लग रहे, आखिर क्या सोच रहे हैं, मम्मी पापा की कोई बात आपको बुरी लगी क्या? अभिमन्यु ने इप्सिता के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी, उसने इप्सिता की तरफ देखकर अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं इप्सिता, हमें भला मम्मी पापा की बात बुरी कैसे लग सकती है, और वैसे भी हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, तो फिर किसके बारे में सोच रहे हैं, आप बताइए। जैसे ही इप्सिता ने ये बात पूछी, अभिमन्यु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमें ऐसा बहुत कम फील होता है, और जब जब हमें ऐसा कुछ भी फील होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है, हमारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है इप्सिता। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने अभिमन्यु के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाईं और उसके हाथ को हल्के हाथ से रब करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए, और वैसे भी अगर कुछ होगा भी तो हम आपके साथ हैं। जैसे ही इप्सिता ने ये बात कही, अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर हल्की से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप हमारे साथ हैं, इसीलिए तो हम और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं, हमें पता है चाहे कुछ भी हो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। इतना बोलकर उसने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराई और थोड़ी ही देर में वो लोग सीधे राजमहल पहुंचे। जैसे ही राजमहल के अंदर कार आई, अभिमन्यु का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। इप्सिता, जिसने अपना सिर अभिमन्यु के सीने पर रखा हुआ था, अभिमन्यु की दिल की धड़कनें साफ महसूस करने लगी। वो अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। इप्सिता ने अपना हाथ अभिमन्यु के सीने पर रखा और हल्के से उसके सीने को रब किया। उसे ऐसा करते देखकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसके हाथों को चूम लिया। जैसे ही कार रुकी, अभिमन्यु कार से बाहर उतरा और इप्सिता की तरफ का दरवाजा खोला। उसने जाकर इप्सिता के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वे दोनों जैसे ही राजमहल के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा माँ सा वहीं हॉल में अपनी चेयर पर बैठी हुई हैं और समर्थ और अर्पिता एक साथ खड़े हैं। वहीं नरेंद्र और पल्लवी उन दोनों को घूरते हुए देख रहे हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने उन सबको इस तरह हॉल में इकट्ठा खड़े देखा, अभिमन्यु का दिमाग सनक गया और उसने अपने मन में कहा, पक्का कुछ तो हुआ है यहाँ पर। इप्सिता ने उन सब की तरफ देखा और फिर वो अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अभिमन्यु ने इप्सिता के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी, उसने धीमी आवाज में कहा, इप्सिता, हम आपसे बोल रहे थे ना, हमारी गट फीलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जब भी हमें ऐसा कुछ महसूस होता है, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वो खुद भी काफी हैरान थी और वहां की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, हम समर्थ से बोलकर गए थे कि हमारे यहाँ न रहने पर चाचा सा और चाची सा पर नजर रखना, वो दोनों शांत बैठने वाले में से तो नहीं है, और देखो पता नहीं उन लोगों ने क्या किया है, और समर्थ भी इस तरह से इतना शांत क्यों खड़ा है। अभिमन्यु इतना बोलते हुए आगे बढ़ा, तभी अचानक से पल्लवी की नजर इप्सिता और अभिमन्यु पर गई। वो उन दोनों के हाथ को एक दूसरे के हाथ में देखकर और भी ज्यादा खिसिया गई। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तो आ गए राजा साहब, अब क्या बोलेंगे, अपनी बहन की हरकतों पर कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं, आपको पता है आपकी बहन यहाँ आपकी पीठ के पीछे क्या गुल खिला रही है। जैसे ही पल्लवी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर ये बात कही, अभिमन्यु की भौहें सख्त हो गईं और वो अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात करिए हमारी बहन के बारे में। अर्पिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो भागते हुए अभिमन्यु के गले लग गई। अभिमन्यु ने अर्पिता को जैसे ही रोते हुए देखा, उसने अर्पिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे चुप करते हुए कहा, अर्पिता क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अर्पिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, वो और भी जोर से रोने लगी। इप्सिता ने अर्पिता को रोते हुए देखा तो वो जल्दी से उसके बगल में आकर खड़ी हुई और उसने अर्पिता की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अर्पिता क्या हुआ आपको, बताइए हमें यहाँ पर क्या चल रहा है।
लेकिन अर्पिता कुछ भी बोल नहीं रही थी। तभी पल्लवी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, बोलेगी भी कैसे, अपने असली रंग जो दिखा रही है। अब मुझे पता चला कि जयराज ने इसे डिवोर्स क्यों दिया है। अगर इस तरह ये अपने ही भाई के दोस्त के साथ मुंह मारती फिरेगी तो कौन सा आदमी भला ऐसी औरत के साथ रहेगा। अभिमन्यु ने जैसे ही पल्लवी की ये बात सुनी, वो गुस्से से उन्हें घूरते हुए देखने लगा। मासा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वहीं इप्सिता की नजर अर्पिता और समर्थ पर गई। समर्थ बिल्कुल शांत खड़ा था। अभिमन्यु और इप्सिता दोनों में से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर पल्लवी ये सब क्या बोल रही है। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता को चुप करते हुए कहा, अर्पिता आप चुप हो जाइए और हमें बताइए आखिर बात क्या है। अभिमन्यु की बात के जवाब में अर्पिता कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही पल्लवी तनतनाते हुए आगे आई और उसने अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए कहा, वो क्या बताएगी, हम बताते हैं तुम्हें पूरी बात कि आखिर बात है क्या। तुम्हारी बहन तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे इस दोस्त के साथ गुलझर्रे उड़ा रही थी और पता नहीं कब से ये सब चल रहा है, तभी तो इतनी आसानी से अपने पति को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। अभिमन्यु और पल्लवी की ये बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगा। तभी पल्लवी ने अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हमें ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी अब तो आप अपनी नजर नीचे ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बहन ने आपको नजरें उठाने लायक छोड़ा नहीं है। अभी तो इस समर्थ के साथ गुलझर्रे उड़ा रही थी, पता नहीं और किस किस के साथ मुंह मारती फिरती होगी ये। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी वो आगे बढ़ा और उसने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, चाची जी अब आप अर्पिता के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेंगी, आपका कोई हक नहीं बनता उसके लिए सारी बातें बोलने का, और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके खिलाफ ये शब्द बोलने की। अभिमन्यु ने जैसे ही समर्थ को अर्पिता की साइड लेते हुए देखा तो वो उसे हैरानी से देखने लगा। तभी अर्पिता ने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु ने समर्थ की तरफ देखा, उसने अर्पिता की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, अर्पिता क्या चाची सा जो कह रही हैं वो सही हैं। अर्पिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने धीमी आवाज में कहा, भाई सा वो हम बस।
अर्पिता बोल नहीं पा रही थी। तभी समर्थ अर्पिता के बगल में आकर खड़ा हुआ और उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभी हम दोनों तुमसे ये बात बताने वाले थे, लेकिन अर्पिता ने कहा कि तुम्हारे पग भीरे की रस्म हो जाए उसके बाद मैं तुमसे इस बारे में बात करूं। मैं अर्पिता को बहुत प्यार करता हूं और आज से नहीं हमेशा से, मैंने अर्पिता के अलावा कभी किसी को अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अभिमन्यु ने समर्थ की ये बात सुनी और उसने धीरे से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अभिमन्यु ये बोला ही था इससे पहले कि अर्पिता या समर्थ में से कोई उसकी बात का जवाब दे पाता, इससे पहले नरेंद्र पीछे से तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, कैसे बताता, अब जब इसकी चोरी पकड़ी गई है तभी बताया है, वरना ये दोनों तो हमारी नाक के नीचे ही ये सब कर रहे थे। ये कहो अच्छा हुआ जो पल्लवी ने कल रात में इन दोनों को गार्डन में बैठे देख लिया, दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए थे। और मैं भी यही सोच रहा था कि इतने दिनों से अभिमन्यु यहाँ थे नहीं तो ये समर्थ यहाँ पर इतनी जिम्मेदारी के साथ काम कैसे कर रहा है। अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब इसीलिए हो रहा था, कोई और वजह थी ना उसके पास यहाँ पर रुके रहने की। टू बी कंटिन्यूड।